हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 5 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेमा भूमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापरा नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनं तं नमामि हरि परम। न कामयेनाथ तदा यहं क्वचित् न यत्र पुष्मत् चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युत वीदत्स्वकर्णा युतमेश मे नर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि में भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 6 जिसका शीर्षक है विश्वरूप की सृष्टि। सबसे पहले मैत्रेय मुनि ने कहा कि इस तरह भगवान ने महातत्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग ना होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में सुना, और उसके उपरांत भगवान ने तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करते हैं। इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव प्रबुद्ध होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जागकर अपने कार्यों में लगता है। तो जिस तरह से हमने कल पढ़ा कि सारे जीव जो हैं वो प्रलय के समय भगवान के शरीर में आकर सुषुप्त अवस्था में हो जाते हैं, और भगवान पुनः जब सारे तत्वों का निर्माण करते हैं, प्रकृति का निर्माण करते हैं, और अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर जब स्वयं प्रविष्ट हो जाते हैं, तो वो सारे जीव जो हैं वो जो सोए हुए थे वो जाग जाते हैं, और फिर वो अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया, तो भगवान का विराट विश्वरूप शरीर प्रकट हुआ, और इस तरह से सारे जीवों के अंदर चेतना के रूप में आत्मा, और फिर परमात्मा की सहायता से आत्मा को पावर मिलता है। यानी आत्मा जो है वो शरीर को कार्य करने की शक्ति देती है, उसी तरह भगवान जो है वो आत्मा को कार्य करने की शक्ति देते हैं। और इस तरह से उसके उपरांत जब सारे तत्व बन गए, तो फिर भगवान ने अपना विश्वरूप प्रकट किया। अब भगवान का, यानी कि प्रकृति के बाद विश्वरूप आया है, तो वास्तव में भगवान का वास्तविक स्वरूप तो भगवान ही है, लेकिन भगवान अपने अंदर से, भगवान कहते हैं ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, ये विश्वरूप जो तेज है, जो ज्योति है, वो भगवान से ही प्रकट होती है। उसके उपरांत श्लोक नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करेंगे। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वश्री गण चुक्षोभ भान्योभ्यमासाध्य यस्मिन् लोका चराचरा परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृग्रण चुक्षो भान्योन यमासाध्य यस्मिन् लोका चराचरा परेण विशता। परेण यानी भगवान द्वारा, विशता माना इस तरह प्रवेश करके, स्वस्मिन् यानी स्वतः, मात्रया यानी स्वांश द्वारा, विश्वसृक यानी विश्व सृष्टि के तत्व। तो जब इस तरह से भगवान ने अपना विश्व स्वरूप प्रकट किया, तो अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों के अंदर जब भगवान ने स्वयं को प्रवेश किया, तो विश्व सृक गण, विश्व सृक यानी विश्व सृष्टि के तत्व, गण मना सारे, और चुक्षोभ्यान, चुक्षोभ यानी रूपांतरित हो गए, अन्यो अन्योन्यम यानी परस्पर, किसमें आसाध्य यानी प्राप्त करके, यस्मिन लोका चराचरा, यस्मिन यानी जिसमें, लोका मना लोक, चराचरा यानी जड़ तथा चेतन। अनुवाद देखिए, ज्यों ही भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए। अब क्या है, पहले तो भगवान स्वयं थे, लेकिन भगवान ने फिर प्रत्येक वस्तु के अंदर, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, उसके अंदर अपने आप को प्रवेश कर दिया। यानी क्योंकि जब तक वस्तु जो है, तब तक वो अपने वास्तविक अस्तित्व को प्राप्त नहीं करती जब तक परमात्मा के रूप में भगवान उसके अंदर ना हो, तो सारे चर अचर वस्तुओं में भगवान ने स्वयं को प्रविष्ट कर दिया। और जैसे ही प्रविष्ट हो गए प्रत्येक जीव, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए। अब पहले तो भगवान थे, अब विराट स्वरूप हो गया, कण कण में भगवान व्याप्त हो गए, जिसमें सारे लोक और समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई हैं। और यही भगवान का विराट स्वरूप है, यही भगवान का निराकार स्वरूप है। भगवान कण कण में है, तो सारी जितनी भी सृष्टियां भगवान के उस स्वरूप में टिकी हुई हैं। अनुवाद, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते, विराट सृष्टि के सारे तत्व पदार्थ हैं, और जब तक भगवान अपने स्वांश रूप में उनमें प्रवेश नहीं करते, तब तक आकार में वृद्धि करने की उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है। अब जितने भी इस जगत में जितने भी तत्व हैं वो सब क्या है, पदार्थ हैं, चाहे वो चर हो या अचर हो। जैसे वृक्ष हैं वो बड़े होंगे ना, लेकिन तब तक बड़े नहीं होंगे जब परमात्मा के रूप में उसके अंदर परमात्मा का स्वांश नहीं होगा। उसी तरह से मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, वो जितने भी हैं उसके अंदर सबसे पहले तो भगवान को प्रवेश करना होगा, फिर उनके अंदर कोई सामर्थ्य आता है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक उनमें भगवान प्रवेश नहीं करते तब तक आकार में वृद्धि करने की उनमें कोई सामर्थ्य नहीं होती। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक आध्यात्मिक स्पर्श नहीं होता तब तक पदार्थ घट या भर नहीं सकता, मतलब उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आए। वो ऐसे कैसा होगा जब तक कि उसके अंदर भगवान जो है वो प्रवेश नहीं करते, आध्यात्मिक स्पर्श उसको चाहिए होता। पदार्थ आत्मा का प्रतिफल है और आत्मा के स्पर्श से ही बढ़ता है। इस संपूर्ण विराट जगत ने अपने आप यह विराट रूप धारण नहीं किया है, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत धारणा है। जब तक पदार्थ के भीतर आत्मा रहता है तब तक पदार्थ आवश्यकता अनुसार बढ़ सकता है, किंतु आत्मा के बिना पदार्थ बढ़ना बंद कर देता है। उदाहरणार्थ जब जीव के शरीर के भीतर आध्यात्मिक चेतना रहती है तब तक शरीर अपेक्षित आकार तक बढ़ता रहता है, किंतु मृत भौतिक शरीर जिसमें आध्यात्मिक चेतना नहीं रहती बढ़ना बंद कर देता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात बता रहे कि जितने भी जीव हैं उनमें जो ये बढ़ने का अमल होता है, जैसे कौमारम यौवनम जरा, इसका कारण आत्मा है, आध्यात्मिक स्पर्श है। अभी जैसे दो बच्चे साथ में पैदा हुए हों, एक जीवित हो एक के अंदर से आत्मा निकल गई हो। जीवित और मृतक में एक ही है ना डिफरेंस है, दिखने में वो ऐसे ही रहते हैं, आंख भी होती है, नाक भी होता है, शरीर हाथ पांव सब कुछ होते हैं, उसके अंदर आत्मा नहीं होती है। तो अब जैसे 4-5 महीने के बाद हम देखेंगे जो जीवित बच्चा होगा ना वो बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर चेंजिंग्स आएंगी, लेकिन जो मृतक होगा ना वो बढ़ेगा नहीं, वो सड़ेगा, है ना उसके अंदर, क्योंकि बढ़ने का जो आत्मिक स्पर्श है आध्यात्मिक वो नहीं है। तो जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में शरीर को नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना को महत्व प्रदान किया गया है। वास्तव में शरीर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आत्मा ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी हम लोगों ने उदाहरण दिया कि दो बच्चे अगर एक साथ पैदा होते हैं, एक के अंदर आत्मा है दूसरे में नहीं है, तो वो माँ जिसने उत्पन्न किया ना उसको, उसमें से वो उस बच्चे के अंदर जिसके अंदर आत्मा है उसको उठाएगी, दूध पिलाएगी, उसके ख्याल रखेगी, और जो दूसरा है जिसके अंदर आत्मा नहीं उसको क्या करेंगे, उसको या तो जला देंगे या दफना देंगे। तो क्या वो दूसरा बच्चा उसका नहीं है, उसी का है? क्या उससे प्रेम नहीं है? प्रेम तो है, बट वो आत्मा नहीं है ना, तो वो शरीर किसी काम का ही नहीं है। वास्तव में हम जो भी हमारा संबंध है, जो भी हमारा प्रेम है, वो आत्मा के प्रति होता है, शरीर के प्रति नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो तब भी पड़ा होता है ना जिसमें आत्मा नहीं होती। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या है देखना, ये है महत्वपूर्ण तो आत्मा है जो उस शरीर के अंदर। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं संपूर्ण विराट शरीर उसी विधि से बड़ा जिससे हम अपने लघु शरीरों में अनुभव करते हैं। तो इस तरह से सारे जो विराट शरीर है, संपूर्ण विराट शरीर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। ये लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु मनुष्य को मूर्खतावश ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यष्टि सूक्ष्म आत्मा विश्वरूप की विराट अभिव्यक्ति का कारण है। जो हमारी अपनी आत्मा है वो विश्वरूप का कारण नहीं है। विश्वरूप को विराट रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि
भगवान अपने स्वांश रूप में इसके भीतर होते हैं।
विश्व रूप को विराट स्वरूप क्यों कहा जाता है? इस पूरे विश्व में, क्योंकि भगवान एक अपने एक अंश के द्वारा इस सारे सृष्टि के प्रत्येक कण में, प्रत्येक जीव में रहते हैं, इसलिए इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। इसलिए क्योंकि इसके अंदर भगवान है, लेकिन ये जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा है वो विराट स्वरूप का हिस्सा नहीं है। हमारी आत्मा जो है वो भगवान का एक अंश है और वो पहले से ही भगवान का अंश थी। शुरू से ही आत्मा भगवान का ही अंश है और वो तटस्थ शक्ति है।
इसलिए हमको विराट रूप में या फिर जो भगवान का ब्रह्म ज्योति है उसमें लीन नहीं होना है। हमें हम क्योंकि भगवान की तटस्थ शक्ति है, जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, तो भगवान की सेवा करना ही उसका उद्देश्य है। तो जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, तो जीव को तभी आनंद आएगा जब वो भगवान की फिर से दासत्व को स्वीकार करेगा। आगे मैत्रेय मुनि जो है वो कहते हैं, हिरण्य हिरण्मय सब पुरुष सहस्त्र परिवत्सरान अंडकोश अवासाप्सु सर्वसत्वोपबृहिता हिरण्मय सपुरुष सहस्त्र परिवत्सरान अंडकोश अवासाप्सु सर्वसत्वोपबृहिता। हिरण्मय यानी विराट रूप धारण करने वाले गर्भोदक्षाय विष्णु। अब जो गर्भोदक्षाय विष्णु है उनका एक नाम है हिरण्मय। सपुरुष, स मन वो पुरुष मन ईश्वर का अवतार। सहस्त्र परिवत्सरान, सहस्त्र मन 1000, परिवत्सरान मतलब देवी वैष्णो तक। अंडकोश यानी अंडाकार ब्रह्मांड के भीतर। अभी जो एक ब्रह्मांड होता है उसको अंडकोश भी बोलते हैं, और उसके अंदर जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो 1000 दैवी वर्षों तक आवास यानी निवास करता है। और अप्सु यानी जल में, सर्व तत्व यानी उनके साथ शयन करने कर रहे सारे जीव उपबृंहुत इस तरह फैले हुए हैं। अब ये गर्भोदक्षाय विष्णु, जैसे पहले पूरे संसार में भगवान का विराट स्वरूप उत्पन्न हो गया, और वो कैसे है, जो कारण दक्षाय विष्णु है ना, समझो पूरे संसार में फैले हुए हैं उनके जो उनका जो विराट स्वरूप है। अब उसमें से एक गर्भोदक्षाय विष्णु निकलता है, और गर्भोदक्षाय विष्णु क्या उस जो अंडे के समान है, वो सहस्त्र परिवर्त, सहस्त्र मतलब 1000, परिवत्सरान मतलब दैवी वर्षों तक, 1000 दैवी वर्ष तक वो वहां पर रहता है। अनुवाद देखिए, विराट पुरुष जो हिरण्य मय कहलाता है ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहता है, और सारे जीव उसके साथ शयन करते हैं, सारे जीव उसके साथ होते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, तो आधा ब्रह्मांड जल से भर गया, यानी फिर क्या हुआ, कारण दक्षाय विष्णु के जो पसीने का जल है उसे आधा भर गया। लोकों ब्रह्म सॉरी बाह्य आकाश इत्यादि की विराट अभिव्यक्ति जो हमें दृष्टिगोचर होती है, पूर्ण ब्रह्मांड की केवल आधी है। अब यहाँ पर ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसका आधा तो जल से भर गया ना, अभी जो आधा बचा है उसी में सारे लोक हैं, उसी में सब कुछ जो हमें दृष्टिगोचर है यानी दिखता है वो आधा है। अभिव्यक्ति के पूर्व तथा ब्रह्मांड के भीतर विष्णु के प्रवेश करने के बाद 1000 दैवी वर्ष की अवधि होती है। अभिव्यक्ति के पूर्व यानी ये जो संसार है उसके बनने के पहले और ब्रह्मांड के भीतर विष्णु के प्रवेश करने के बाद विष्णु ने प्रवेश किया तो एक उसकी अवधि, उसका टाइम कितना है, 1000 दैवी वर्ष। महातत्व के गर्भ में प्रविष्ट किए गए सारे जीव सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं और वे भगवान के साथ तब तक शयन करते रहते हैं जब तक ब्रह्मा का जन्म नहीं होता। ब्रह्मा, अभी देखो अब तक ये सारे जीवों का जन्म नहीं हुआ है, सृष्टि का स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये पूरा इतना टाइम ऐसे नहीं कि आज है ना कारण दर्शाय विष्णु में से गर्भोदक्षाय विष्णु निकले और आज ही आज ब्रह्मा जी बन गए और आज ये सारा सृष्टि बन गया। नहीं, वो 1000 देवी वर्षों तक जीव सारे गर्भोदक्षाय विष्णु के साथ शयन कर रहे होते हैं और फिर धीरे 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 जब ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, यानी कि जब तक वो लोग शयन करते जब तक ब्रह्मा का जन्म नहीं होता, और जब ब्रह्मा का जन्म होता है ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा ही प्रथम जीव होते हैं और अन्य सारे देवता तथा जीव उन्हीं से जन्म लेते हैं। फिर जब ब्रह्मा का जन्म होता है तो सारे देवता सारे जीव उनमें से जन्म लेते हैं। मनुष्य जाति के आदि पिता मनु हैं, अतएव संस्कृत में मानव जाति मनुष्य कहलाती है। विभिन्न शारीरिक गुणों वाला मानव विभिन्न लोकों में विभाजित किया जाता है। अब क्या होता है कि मनुष्य किससे बनते हैं, मनु महाराज से, तो मनु महाराज मनुष्य की सृष्टि करते हैं, इससे वो आदि पिता पिता मनु हैं। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने एक खास बात ये बताई कि जो भी हमारे शारीरिक गुण होते हैं, जैसे हम जैसा जैसा हमें शरीर मिला होता है उसी के अनुसार हम विभिन्न लोकों में विभाजित अलग अलग लोकों में चले जाते हैं। किसी को गंधर्व का शरीर मिलता है तो गंधर्व लोक में जाते हैं, किसी को देवताओं का स्वरूप मिलता है तो वो स्वर्ग लोक में जाते हैं, किसी को मनुष्य का शरीर मिलता है तो वो मनुष्य के लोक में जाते हैं, और किसी को यदि पशु पक्षी का शरीर मिला है तो उसी के अनुसार उसको वो लोक भी प्राप्त होता है। तो अलग अलग लोकों में सारे जीवों को उनके शरीरों के गुणों के अनुसार भेज दिया जाता है। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, सवैवेश्व स्रजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजात मनात्मानं एकदा दशदा त्रिधा सवैवेश्व स्रजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजात्मा विभाजात्मनात्मनामेकम् विभजात्मना महानम एकदा दशदा त्रिधाम विभजात्मनात्मानम। यानी कि अब क्या बता रहे हैं, सवै विश्व सृजाम गर्भो, स मन वै मन निश्चय ही विश्व सृजाम विश्वरूप की गर्भ यानी संपूर्ण शक्ति। अब जो विश्वरूप की जो शक्ति है उससे क्या होता है, देव कर्मात्म शक्तिमान, देव मना सजीव शक्ति, कर्म मना जीवन की क्रियाशीलता, आत्मना आत्मा मतलब आत्मा, और शक्तिमान यानी शक्तियों की से पूरित। तो ये सारी जो भी हैं मतलब हमारी जो सृजन जीवन सजीव शक्ति है, जो हमारे कर्म हैं और जो हमारी आत्मा की शक्ति है, वो सब विभाज यानी विभाजित कर दी जाती है। आत्मना यानी अपने आप से, आत्मनाम यानी अपने को किस तरह से विभाजित करती हैं, एकदा मना एक में, दशदा मना दस में, त्रिधा मना तीन में। और वो एकदा त्रिधा और दशदा ये क्या है वो आगे हमें श्रीला प्रभुपाद जी समझाएंगे। तो अनुवाद देखिए, विराट रूम में महतत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर दिया। अब जो ये विराट स्वरूप है, महतत्व की जो समग्र शक्ति है, वो सारे जीवों की चेतना मतलब बुद्धि और जो कार्य हैं, क्रियाशीलता और आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर दिया, जो एक, दस तथा तीन में क्रमशः उपविभाजित हो जाती हैं। एक यानी वन, तीन मना तीन और दस के अंदर से वो किस तरह से विभाजित हो जाती हैं। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, चेतना जीव या आत्मा का चिन्ह है। यानी आपके अंदर आत्मा है तो उससे चेतना होती है। चेतना माना शऊर होता है, कुछ करने की, कुछ कहने की, कुछ क्रियाशीलता जीव के अंदर तब होती है जब उसके अंदर आत्मा होती है। तो ये चेतना क्या है? आत्मा की पहचान है। समग्र चेतना विराट रूप की होती है और वही चेतना पृथक पृथक व्यक्तियों में प्रकट होती है। वास्तव में ये आत्मा तो भगवान का ही एक अंश है, लेकिन पृथक पृथक व्यक्तियों में प्रकट होती है। चेतना का कार्य प्राण वायु के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जो दस प्रकार की है। अब दस ये बताया गया ना, एकदा दशदा, तो दस प्रकार की प्राण वायु होती है। ये प्राण वायुएं अपान, उदान, व्यान तथा समान कहलाती हैं, और नाक, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त तथा धनंजय के रूप में अलग अलग गुणों वाली भी हैं। तो ये दस वायु के नाम हैं और उनके गुण हैं, तो दस ये हो गए। आत्मा की चेतना भौतिक वातावरण द्वारा दूषित हो जाती है और इस प्रकार शारीरिक पहचान के मिथ्या अहंकार में विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। अभी वो आत्मा जो है वो देहात्म बुद्धि के कारण यानी शारीरिक पहचान के कारण दूषित हो जाती है और मिथ्या अहंकार में विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। वो क्योंकि अपने रियल स्थिति अस्तित्व को भूल जाता है, फिर अलग अलग कार्य करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 2.41 में इन विभिन्न कार्यकलापों का वर्णन, बहुशाखायंतस्य बुद्धयो अव्यवसायी नाम के रूप में हुआ है। यानी कि वैसे तो व्यवसायात्मिका बुद्धि एक के है करो कुरुनंदना, जब आत्मा शुद्ध होगी ना तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान में लगी होगी, उसको और कुछ भी याद नहीं रहेगा और कुछ भी करने का उसके पास कुछ रीजन नहीं होगा। लेकिन जब वो आत्मा बहुशाखा यानी अपने आप को देहात्मा बुद्धि में आ जाती है और अपने आप को देह समझकर अपनी रियल स्थिति को भी भूल जाती है, फिर तो बहुत शाखों में ये चाहिए, ये प्राप्त करना है, ऐसे करना चाहिए, ये करना है, वो करना है। तो इस तरह बहुशाखा अनंताशय, उसका कोई अंत नहीं है। अनगिनत इच्छाएं जीव के ऊपर तब आती हैं जब वो अपने अस्तित्व को भूल जाता है। तो बद्ध आत्मा शुद्ध चेतना के अभाव में विविध कार्यों में मोहग्रस्त हो जाता है। शुद्ध चेतना नहीं है तो ही जीव ऐसे कार्य करता है जो उसे बारंबार जन्म मरण के चक्कर में डाल देते हैं। शुद्ध चेतना अवस्था में केवल एक कार्य होता है। व्यष्टि आत्मा की चेतना उस समय परम चेतना से एक हो जाती है जब इन दोनों के मध्य पूर्ण समन्वयन होता है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इन दोनों के मध्य में, यानी आत्मा और परमात्मा, जब अपने आप आत्मा अपने आप को जान जाती है और परमात्मा की शरण में आ जाती है, फिर उसका एक ही कार्य होता है, भगवान की सेवा करना। व्यष्टि आत्मा की चेतना उस समय परम चेतना से एक हो जाती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है वो एक ही बन जाती है, उसका मतलब ये है कि फिर वो उसकी इच्छा एक ही होती है कि वो भगवान की सेवा करे।
तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे अद्वैतवादियों के विषय में बताते हैं कि अद्वैतवादी का विश्वास है कि चेतना केवल एक होती है, जबकि सात्वतों अर्थात भक्तों का विश्वास है कि यद्यपि चेतना निसंदेह एक है, किंतु उनमें तालमेल होने से ही वे एक है। यानी कि चेतना, वैसे तो वो कहते हैं चेतना एक ही है आत्मा परमात्मा, लेकिन भक्त लोग का क्या कहना है कि चेतना एक ही है, मतलब शौर एक ही है, लेकिन तालमेल होने से वे एक है। वैष्टि चेतना को परम चेतना के साथ जुड़ जाने की सलाह दी जाती है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 18.66 में भगवान ने उपदेश दिया है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम रजा। व्यष्टि चेतना अर्जुन को परम चेतना के साथ साथ रहने की और इस तरह अपनी सचेत शुद्धता बनाए रखने की सलाह दी गई है। चेतना के कार्यकलापों को बंद करने का प्रयास मूर्खता है। अभी यहाँ अर्जुन को क्या सलाह दी गई, माम एकम शरणम रजा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन ये जो अपराध है वो भगवान समाप्त कर देंगे। कब करेंगे? जब हम भगवान की शरण में आएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यष्टि चेतना यानी अर्जुन को परम चेतना के साथ साथ रहने की और इस तरह अपनी सचेत शुद्धता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। चेतना के कार्यकलापों को बंद करने का प्रयास मूर्खता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस अभी चेतना को भगवान के अंदर लीन कर दे, बस अभी वो कोई काम नहीं करे, किंतु भगवान के साथ जोड़कर उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। यह चेतना शुद्धि की मात्रा के अनुसार आत्म पहचान के तीन गुणों में विभाजित की जाती है। अब यहाँ शुद्धि की मात्रा के अनुसार तीन गुणों में विभाजित होती है, आध्यात्मिक अर्थात शरीर तथा मन के साथ आत्म पहचान, आदि भौतिक या भौतिक उपाधों के साथ आत्म पहचान तथा आदि दैविक या भगवान के सेवक के रूप में आत्म पहचान। यानी कि तीन, जैसे जैसे आपके गुण होंगे उसके अनुसार। पहला क्या है, आदि भौतिक यानी भौतिक उपाधियों के साथ हम ये सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मुझे ये कार्य करना चाहिए, मेरा कर्तव्य ये है, और मुझे क्या करना चाहिए अपने वतन का। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं अपने वतन की, अपने देश की सलामती के लिए ये कार्य करना चाहिए। तो ये आदि भौतिक यानी भौतिक पदार्थों के साथ पहचान, तथा आदि दैविक या भगवान के सेवकों के रूप में पहचान कि मैं तो भगवान का सेवक हूँ, मुझे भगवान की ना सेवा करनी चाहिए। और दूसरा क्या है, अर्थात शरीर तथा मन के साथ अपनी पहचान। हाँ, आध्यात्मिक अर्थात शरीर तथा मन, मैं और मेरा, ये मैं हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं ये इस तरह से करना है, मैंने ये किया, और शरीर से रिलेटेड वस्तु, इस तरह से उसको बोलते हैं आध्यात्मिक पहचान। और थोड़ा सा विकसित हो जाता है आदि भौतिक पदार्थों के साथ, क्योंकि सारे संसार भगवान ने बनाया है, इसलिए हर एक पदार्थ के साथ अपना पहचान बनाता है। और फिर आदि दैविक या भगवान के सेवकों के, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा कर। तो इन तीनों में आदि दैविक आत्म पहचान भगवान की इच्छा का पालन करते हुए चेतना की शुद्धि की शुरुआत है। जब हम आदि दैविक पहचान बनाएंगे कि मैं तो भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान के लिए कार्य करना है, तो ये क्या है, तो ये भगवान की इच्छा का पालन करते हुए चेतना की शुद्धि की शुरुआत है। यहाँ से हमारी चेतना जो कि जन्म जन्मांतर से अशुद्ध पड़ी है, जब हम ये कार्य करना शुरू करते हैं कि हम भगवान के दास हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, तो फिर हमारी चेतना भी शुद्ध हो जाती है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, एष हि सत्
सत्वानाम आत्मांश परमात्मना आद्योवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते एष हि शेषसत्त्वानाम् आत्मांशः परमात्मना आद्योवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते एष यानि यः हि मन निस्संदेह अशेष यानि असीम सत्वानाम यानी जीवों के आत्मा यानी आत्मा अंश यानी अंश परम आत्मा यानी परमात्मा का आद्य यानी प्रथम अवतार यानी अवतार यत्र जिसमें असौ ये सब भूत ग्राम यानी समुचित सृष्टियां विभाव्यते यानी फलती फूलती हैं। अनुवाद भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। वे असंख्य जीवों के आत्मा हैं और उनमें समुचित सृष्टि यानी भूत ग्राम टिकी रहती है जो इस तरह फलती फूलती है। अब ये सब क्यों बता रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी है वो भगवान के ऊपर टिका हुआ है, भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है। जैसे अल्पज्ञानी यहाँ पर लोग होते हैं, वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, लेकिन जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सारे जितने भी जीव हैं वो भगवान से उत्पन्न हुए होते हैं, जितने ब्रह्मांड हैं वो भगवान के शरीर से निकलते हैं, जितने भी यहाँ पर सत्ता है प्रत्येक वस्तु के अंदर जब भगवान का स्वरूप जब जाता है तो ही वो कोई कार्य कर सकती है। इसलिए यहाँ पर बताया जाता है भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। जो विश्वरूप है भगवान का स्वांश है और असंख्य जीवों के आत्मा हैं और भगवान जो है वो सब जीवों के आत्मा हैं और उनमें समुचित सृष्टि यानी भूतग्राम टिकी रहती है जो इस तरह फलती फूलती रहती है। समुचित सृष्टि उसके अंदर टिकी है और फिर भगवान की कृपा से फलती फूलती है। अनुवाद तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की। अभी यहाँ देखो बहुत ही खास बात शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान दो प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, आत्मस्वांश द्वारा तथा विभक्त सूक्ष्म अंश द्वारा। दो तरीके से, एक तो भगवान स्वांश, भगवान अपने स्वांशों को प्रकट करते हैं यानी विष्णु तत्व जो होते हैं, और दूसरे क्या है विभक्त सूक्ष्म अंश यानी जितने जीव हैं वो। तो आत्म स्वांश विष्णु तत्व है यानी कि जो भगवान के स्वांश है वो कौन है, विष्णु तत्व है, तथा विभक्त अंश जीव हैं, वो विभक्त हैं, जो जीव हैं वो आत्मसांश हैं जो विष्णु तत्व हैं, बाकी जितने भी जीव हैं वो विभक्त हैं। चूंकि जीव अत्यंत लघु है अतएव कभी कभी उन्हें भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, तो यहाँ पर जीव जो है वो क्या है, भगवान की तटस्थ शक्ति है। किंतु योगी जन जीवों तथा परमात्मा को एक ही मानते हैं। जो योगी जन हैं वो सोचते हैं कि हम जो परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं वो परमात्मा और जितने भी शरीर हैं उनके अंदर एक परमात्मा का जो अंश है वो उसको एक ही मानते हैं, अतएव कभी कभी उन्हें भगवान के तटस्थ शक्ति। किंतु योगी जन जीवों तथा परमात्मा को एक ही मानते हैं, पर यह विवाद का बहुत निगरणीय बिंदु है। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं इसके ऊपर क्या बताया जाए, बिल्कुल है ना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। कुल मिलाकर प्रत्येक वस्तु भगवान के विराट रूप या विश्व रूप पर ही टिकी हुई है। तो जितना कुछ भी आपको दिख रहा है संसार में वो भगवान के विराट रूप यानी ये जो है भगवान का जो विश्व रूप है उस पर ही हर एक वस्तु टिकी हुई है। तो जीव तो भगवान का एक सूक्ष्म था छोटा सा अंश है, तो और भगवान विभू हैं, भगवान परमात्मा हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हुए हैं, उन्हीं पर हम सबकी का जीवन, हम सबका जो अस्तित्व है वो टिका हुआ है। श्लोक नंबर 10 में मैत्रेय मुनि जो है वो 3:10-1 के विषय में क्लियर करके बता रहे हैं। वे कहते हैं साध्यात्मा साधि दैवश्च साधि भूत इति त्रिधा विराट प्राणो दश विथ एकदा हृदयेन च साध्यात्मा साधि दैवश्च साधि भूत इति त्रिधा विराट प्राणो दश विध एकदा हृदयेन च साध्यात्म अर्थात शरीर तथा समस्त इंद्रियों समेत मन, मन सारी इंद्रियां और शरीर वो है स आध्यात्म और स आदिदेव तथा इंद्रियों के नियंत्र देवता वो आदिदेव है च स आदिभूत यानी वर्तमान विषय आदिभूत और इति प्रकार इति माने इस प्रकार त्रिधा यानी तीन विराट विराट मतलब विराट प्राण यानी चालक शक्ति और दशविध यानी 10 प्रकार एकदा केवल एक हृदयेन चेतना शक्ति च भी। अनुवाद देखिए विश्वरूप 3:10-1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे भगवान शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं, वे ही 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मिक शक्ति है और वे ही एक हृदय में हृदय है जहां जीवन शक्ति सृजित होती है। ये कैसे बता रहे हैं कि तीन क्या है शरीर तथा मन तथा इंद्रियां, वो भगवान शरीर मन और इंद्रियां भी हैं, वे 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों के गत्यात्मिक शक्ति हैं, यानी जो वायु हमने पढ़ी ना प्राण अपान उदान व्यान तथा समान और उसके साथ जो नाग कूर्म कुकर देवदत्त तथा धनंजय रूप में अलग अलग गुण जो हैं उसके वो 10 शरीर तथा मन तथा इंद्रियां 3 हो गए, 10 जो हैं प्राण वायु और उनके गुण हो गए और वे ही एक हृदय हैं जहां जीवन शक्ति से सृज होती है। हृदय के अंदर जो आत्मा का अंश है वो भी भगवान ही है। तो उसको शिला प्रभुपाद जी बहुत ही डिटेल से समझाएंगे। हम इन शब्दों को श्रवण करके केवल ये नहीं सोच रहे कि हमें ज्ञान कितना प्राप्त हो रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं और शुद्ध भक्त के मुखारविंद से, शिला प्रभुपाद जी के मुखारविंद से ही श्रवण करके हमारे हृदय के अंदर जो गंदगी है वो साफ होती है और ऐसे धीरे 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 हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ये भागवतम का उद्देश्य है कि भगवान के विषय में श्रवण करते 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 भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, इसीलिए हम भागवतम पढ़ते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल कोरा ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान कितने महान हैं, किस तरह से प्रत्येक वस्तु पर उनका कंट्रोल है, कैसे भगवान के ऊपर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है, ये सोच सोच कर हमें ये सोचना चाहिए। हमारा कृष्ण जिसको हम कितना प्यार करते हैं, जिसको हमारे मंदिर में हम प्रसाद जो दिल करता है भगवान को भोग लगाते हैं, जब दिल करता है भगवान की आरती करते हैं, जैसे दिल करता है भगवान का श्रृंगार करते हैं, ये भगवान हमारे होने के लिए कितना सरल हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये कितने महान हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता 7:4-5 में कहा गया है कि 8 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार भगवान की 8 कनिष्ठ शक्ति के उत्पाद हैं, जबकि कनिष्ठ शक्ति का उपभोग करते दिखाई पड़ने वाले जीव मूलभूत श्रेष्ठ शक्ति से अर्थात भगवान की अंतरंग शक्ति से संबंधित है। तो अपरा और पराशक्ति जो हमने सातवें चैप्टर में पढ़ी कि भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रे वच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतरष्टदा अपरियम इतस्त्वन्यान प्रकृतिम विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो ययेदम धारयते जगत। तो जीव जो है वो पराशक्ति है और बाकी जो ये आठ तत्व हैं वो भगवान की अपराशक्ति है। आठों कनिष्ठ शक्तियां स्थूल तथा सूक्ष्म रीति से कार्य करती हैं, वो सूक्ष्म रीति से स्थूल रीति से कार्य करती हैं, जबकि श्रेष्ठ शक्ति मध्यवर्ती केंद्रीय जनक शक्ति के रूप में कार्य करती हैं, जो वास्तविक जो श्रेष्ठ शक्ति यानी जीव आत्मा वो क्या करती केंद्रीय, केंद्रीय मतलब उसी के ऊपर केंद्रित है सारी जो भी बाकी शक्तियां हैं वो, और वो ही इन समस्त शक्तियों का विदोहन करते हैं। तो ऐसा मानव शरीर में अनुभव किया जाता है। स्थूल तत्व पृथ्वी आदि बाह्य स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं और ऊपरी वस्त्र यानी कुर्ते के सदृश हैं, जबकि सूक्ष्म मन तथा मिथ्या अहंकार शरीर के भीतरी वस्त्र यानी बनियान की तरह कार्य करते हैं। अब देखो, एक तो अंडरगार्मेंट्स होते हैं और दूसरा हमारा जो वस्त्र होता है वो, लेकिन वो पहने किसके ऊपर जाते हैं, शरीर के ऊपर जाते हैं ना। तो मन बुद्धि अहंकार जो है वो अंडरगार्मेंट्स बनियान आदि की तरह है, और जो स्थूल है पृथ्वी जल अग्नि वायु इससे हमारा ये शरीर यानी कुर्ते की तरह ये बना है। तो शरीर की गतियां सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती हैं और शरीर के सारे कार्यकलाप इंद्रियों द्वारा संभव होते हैं। पहले तो हृदय के अंदर इच्छा होती है, फिर जो इच्छा हो रही है उसको प्रैक्टिकल करने के लिए इंद्रियां कार्य करती हैं। तो जो शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायु द्वारा शक्ति प्राप्त करती है, 10 प्रकार की वायु का वर्णन इस प्रकार है। श्वास लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु प्राण वायु कहलाती है। जो वायु गुदा से बाहर निकलती है वह अपान कहलाती है। जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है और जो कभी कभी डकार के रूप में निकलती है समान कहलाती है। जो वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुकने से दम घुटता है वह उदान कहलाती है। जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है वह व्यान वायु कहलाती। इन पांचों वायुओं से भी सूक्ष्म अन्य वायु है। जो वायु आंखों के और मुख के खुलने में सहायक बनती है वह नाग वायु कहलाती है। जो वायु भूख को बढ़ाती है वह क्रिकर वायु कहलाती है। जो वायु संकुचन में सहायक होती है वह कूर्म वायु कहलाती है। जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम देती है वह देवदत्त कहलाती है, तथा जो वायु संपोषण में सहायक होती है वह धनंजय वायु कहलाती है। तो इस तरह से 10 प्रकार की वायु होती है। ये सारी वायु हृदय के मध्य से उत्पन्न होती है और हृदय केवल एक है। यह मध्यावृत्ति शक्ति भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है जो हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन है। तो हृदय के अंदर से ही सारी वायु निकलती है और हृदय ही केंद्र है पूरे शरीर को चलाने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए, और वहाँ भगवान हृदय में हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ भगवान यानी परमात्मा रहते हैं जो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्तस्य मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेवचाहम्। संपूर्ण मध्यवृत्ति शक्ति भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है। जो भी शक्तियां हैं वो हृदय से कैसे उत्पन्न हो रही, ऑटोमेटिकली थोड़ी हो रही है, वो कैसे हो रही है, भगवान द्वारा हो रही है। जो वहीं पर स्थित होते हैं और स्मरण करने तथा विस्मरण करने में बद्ध जीव की सहायता करते हैं। ये बद्ध अवस्था जीव द्वारा भगवान की अधीनता की विस्मृति के कारण है। हम बद्ध अवस्था में क्यों आते हैं? क्योंकि जीव आत्मा भगवान को भूल जाती है, इसलिए वो बद्ध जीव कहलाती है, यानी बंधन में है। और जब वो पुनः भगवान को याद करके भगवान की सेवा में लग जाती है तो वो मुक्त आत्मा बन जाती है। तो जो व्यक्ति भगवान को बुलाए रखना चाहता है उसकी भगवान जन्म जन्मांतर बुलवाए रखने में सहायता करते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवत भक्त की संगति के बल पर उनका स्मरण करता है, स्मरण करने में भगवान उसकी अधिकाधिक सहायता करते हैं। इस तरह बद आत्मा अंततो गत्वा भगवत धाम वापिस जा सकता है। तो ये भगवान की कृपा से होता है। भगवान ने कहा मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। आप यदि इच्छा करते हो कि मैं भगवान को याद न करूं, मैं संसार को आनंद लूं, संसार में किस तरह से मैं भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करूं, लग्जरियस लाइफ हो, तो भगवान भी बोलते ठीक है बाबा, तुमको जो करना है करो, तुम भले मुझे भूल जाओ। भगवान को थोड़ी कोई है ना जबरदस्ती किसी से याद, किसी को खुद को याद करना है। आप भगवान इतना प्यार करते कि जे को वर्णित है कर, जैसा आपको अच्छा लगता है मैं वैसा करने में तुम्हारी सहायता करता हूँ। लेकिन यदि जीव चाहता है कि मैं भगवान से पुनः अपने संबंध को निर्माण करना चाहता हूँ, भगवान को स्मरण करना चाहता हूँ, भगवान से प्रेम करना चाहता हूँ, तो भगवान बहुत उसकी सहायता करते हैं। हम एक कदम भगवान की ओर बढ़ते ना तो भगवान 10 कदम आगे आकर हमारा हाथ पकड़ के हमें आलिंगन करते हैं। लेकिन वो एक कदम तो हमें स्वयं बढ़ाना होगा ना, खुद आगे आना पड़ेगा, शुद्ध भक्तों की संगति के साथ भगवान के साथ प्रेम करने का प्रयास करना, हमें केवल प्रयास करना है, नाम जप करने का प्रयास करना होगा, फिर भगवान स्वतः हमारी सहायता करेंगे। तो सबसे बड़ी सहायता क्या है भगवान की, जानते हैं कि संसार जो है वो अच्छा ना लगे। भगवान जब अच्छे लगेंगे, जब प्रेम होगा तब होगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन संसार की आसक्ति समाप्त हो ना, कि संसार में आसक्ति नहीं है, भौतिक वस्तु और व्यक्तियों के प्रति हमारा जो क्रेज है, जो हम चाहते हैं, ये इच्छाएं जो हैं वो जब मंद पड़ जाएं, जब संसार में आकर्षण समाप्त होने लगे ना, तब समझना कि भगवान की कृपा हो रही है। लेकिन भले हम भक्ति बहुत ज्यादा करते रहे, नाम जप भी अच्छा, लेकिन अभी तक संसारी आकर्षण समाप्त नहीं हुआ ना, इसका मतलब है कहीं गड़बड़ है। तो यहाँ जैसे जैसे आकर्षण समाप्त हो जाएगा ना, हृदय साफ होगा, और जहाँ हृदय साफ होगा ना, जहाँ पर एकांत है, साफ सुथरी जगह होगी ना, भगवान वहाँ पर आके विराजने के लिए वो इच्छा करेंगे। अगर देखेंगे यहाँ पहले से भीड़ है, कितने लोगों को बिठा के रखा है, फिर भगवान बोले मैं तो जगह भी नहीं है, तो भगवान आएंगे भी नहीं हृदय में। और जब भगवान हृदय में नहीं आएंगे तो फिर स्मरण में भी नहीं आएंगे, और जब स्मरण में नहीं आएंगे तो फिर हम भगवान के धाम में कैसे जाएंगे। तो यहाँ जैसे जैसे हृदय साफ होगा ना, संसार का आकर्षण खत्म होगा, समझो भगवान के प्रेम हमको भले फील नहीं होता है लेकिन बढ़ रहा होता है। एक तरफ से आकर्षण समाप्त हो रहा होता है तो एक तरफ से भगवान का प्रेम बढ़ रहा होता है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान द्वारा दी जाने वाली इस दिव्य सहायता की विधि का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में इस प्रकार हुआ है। भगवान कहते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। जैसे जैसे जीव
प्रेम के साथ भगवान का भजन करता रहता है, कंटिन्यूस नाम जप करता है, स्मरण करता है, तो ददामि बुद्धि योगम तो ये न माम उपायांते थे। फिर भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं कि ये संसार तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, तो मेरे पास आओ, वहीं पर तुम्हें आनंद मिलेगा। और किस तरह से भगवान के पास आना है वो भगवान बुद्धि देते हैं। मन से परे बुद्धि अर्थात भक्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार को बुद्धि योग विधि अकेले ही मनुष्य को विराट सृष्टि में भवबंधन की बद्ध अवस्था से ऊपर ले जा सकती है। जो ये शुद्ध बुद्धि होती है जिसमें भगवान की भक्ति की जाती है, तब वो ये विराट जो भवबंधन है उससे बहुत ऊपर लेके जाती है मनुष्य को। जीव की बद्ध अवस्था उस व्यक्ति जैसी है जो किसी विशाल यांत्रिक अवस्था में गहराई में हो, यानी जब कोई बहुत ही गहरे कुएं में नीचे गिर जाता है, उसी तरह से बद्ध अवस्था में हम भी संसार के महाजाल में इसी तरह से यांत्रिक यानी एकदम जाल में फंसे हुए हैं। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो मन के ऊपर बुद्धि स्तर से प्रारंभ करता है, आत्म साक्षात्कार में तीव्र गति करता है, तीव्र प्रगति करता है, मन के ऊपर कंट्रोल करता है, इच्छाओं को कम करके भगवान के भजन को प्रारंभ करता है, तो क्या करता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। क्योंकि बुद्धि योग में किसी समय भी हिरास या पीछे जाने की का किसी प्रकार का भय नहीं रहता, अतएव आत्म साक्षात्कार के लिए यह विश्वसनीय मार्ग है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता द्वारा 2.40 में होती है, जिसमें भगवान ने कहा, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो बुद्धि योग यानी भगवान की भक्ति के रास्ते पर जब जीव आगे बढ़ता है, इसमें कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं होता, को कभी भी उसमें नुकसान नहीं होता है, आगे ही बढ़ता रहता है। तो मानसिक चिंतन एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों को श्वेता सूत्र उपनिषद में जैसे बताया गया, आत्मा तथा परमात्मा के रूप में नहीं समझ पाते, यानी ये दो चीज को नहीं समझ पाते जो मानसिक चिंतक होते हैं। तो व्यष्टि आत्मा तो वृक्ष का फल खाता है, किंतु दूसरा पक्षी फल ना खाकर फल खा रहे पक्षी के कार्यकलापों का अवलोकन करता रहता है। यह साक्षी पक्षी फल खा रहे पक्षी को सकाम कर्म करते रहने में पहुंचाता है। जो व्यक्ति आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर और जीव के इस अंतर को नहीं समझ सकता, वह अब भी विराट यंत्र के पास में है, अतएव उसे उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी जब वह इस बंधन से छूट सकेगा। तो श्वेता सूत्र उपनिषद में दो पक्षियों के विषय में बताया गया, और उसमें से एक क्या कर रहा है, वो वृक्ष के फल खा रहा है, यानी जो हम जो हैं जीव आत्माएं, आत्मा इस संसार में आई क्यों है, उसका आने का कारण ये है कि वो संसार में आकर आनंद भोगना चाहती है। वो सोचती है, आत्मा ये अज्ञान के कारण सोचने लगती है, संसार में जाकर आनंद करेंगे और संसार की वस्तुओं का भोग करेंगे, तो फिर भगवान उसको अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि भगवान बहुत प्रेम करता है ना हमसे, तो भगवान बोलता नहीं तुम अकेले नहीं जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। भगवान उसका पूरा साथ देते हैं, जीव चाहे किसी भी शरीर में किसी भी योनि में जाते हैं तो भगवान उसके साथ होते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, हर वक्त उसके ऊपर नज़र करते हैं कि वो कब मेरी ओर देखेगा, कब मेरी ओर। लेकिन हम जैसे दुर्भाग्यशाली जीव जो हैं, वो सदैव संसार की वस्तुओं को भोगने में लगे रहते हैं,
कभी कोई इंद्र तृप्ति तो कभी कोई इंद्र तृप्ति, कभी हम खाकर सुखी होना चाहते हैं तो कभी घूम फिर कर सुखी होना चाहते हैं, कभी हम नाच गाकर सुखी होना चाहते हैं, कभी हम इंद्रिय तृप्ति की उच्च अवस्था कोई भी नीच से नीच कार्य करने के लिए भी हम सोचते हैं ये कर दें तो कितना मज़ा आएगा, ये करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो ये सब फल हैं उस वृक्ष के जो हमें और भी अधिक कर्मों के बंधन में फांसते रहते हैं। लेकिन जब ये जीव ये सोचने लगता है कि ये तो बंधन जितना भी मैं टेस्ट करता हूँ मुझे संसार में कोई सुख आ ही नहीं रहा है, इसमें तो मिठास है ही नहीं। और भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पुनः पुनः चर्वितम चर्वणाम, इस संसार में सुख लगेगा ही नहीं क्योंकि ये तो वो च्युइंगम है जिसको तुमने पहले ही 500 बार चूस चूस के फेंका हुआ है, तो वो चीजें तुमको आनंद देंगी नहीं। और वो जो परमात्मा रूपी पक्षी है उसकी ओर जाकर जब उसको आलिंगन करोगे, जब उसको प्रेम करोगे, तभी ही तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तो जब तक जीव उस भगवान की ओर अपना मुख नहीं करता, वो तो भगवान तो कहते हैं सन्मुख होई जीव जब ही, जब जिस समय बस सन्मुख हो जाए मेरी ओर देख ले बस, जन्म कोटि अख नासों तब ही, मैं याद नहीं कराऊंगा कि देखो कितना समय से तुम मुझे छोड़ के गए थे, कितने टाइम से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, कितना तुमने मुझे अलग अलग योनियों में अपने साथ रहने पर मजबूर किया, मैं सब भूल जाऊंगा, सारे अपराधों को क्षमा करूंगा, बस वो एक बार मेरे सन्मुख हो जाए। परंतु हमारा क्या दुर्भाग्य जानते हो, तेरी चौखट में आना मेरा काम था, काम इतना भी मुझसे हो ना सका, बस भगवान की ओर सन्मुख होना है और हम फिर भी दुनिया में आनंद ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे, थक नहीं रहे हैं। तो ये सब बातें इसलिए बताई जाती हैं भागवतम में शास्त्रों में ताकि हम थक जाएं और भगवान से प्रेम करना शुरू करें और ये निर्णय कर लें, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, जन्म तिहारे लेके हैं, जन्म तिहारे लेके, बस कृष्ण। अब इस जन्म में ये भौतिक वस्तुओं का जो आकर्षण है उसको समाप्त करके मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुमसे प्रेम करूंगा और इस जीवन में मैं अवश्य तुम्हें प्राप्त करूंगा, बस ये निश्चय ही करना है। बाकी उसके लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसका प्रबंध भगवान स्वयं करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं।